ആണം നമോ സിദ്ധാണം നമോ ആയിര്യാണം നമോ വച്ഛായാണം നമോ ലോയേ സവ്സാഹൂണം മംഗളം ഭഗവാനി വീരോ മംഗളം ഗോതിമോഗണി മംഗളം കുന്ദകുന്ദാര്യോ ജൈനധർമ്മോസ്തു മംഗളം സർവമംഗലമാംഗല്യം സർവകല്യാണകാരകം പ്രധാനം സർവധർമാണാം ജൈനം ജയതു ശാസനം ജൈനം ജയതു ശാസനം നമഃ സമയ സാരായ സ്വാനുഭൂത്യാ ച കാസിതി ചിസ്വഭാവായ ഭാവായ സർവഭാവാന്തരച്ഛിതി വന്ദിതു സർവസിദ്ധി ധൂമചലമണോയം ഗതിം പത്തി ബോച്ഛാമി സമയ പാഹുഡ മിണമോ ശുദ്ധ കേവലീ ഭണിതം. ഗ്രന്ഥാദിരാജ് സമയസാര പരമാഗമ ശാസ്ത്ര 320 നമ്പർ കി ഗാഥ और उसमें आचार्य जयसेन देव की महामंगलमय गंभीर रहस्यों का उद्घाटन करने वाली ऐसी ये टीका है. और इसमें अपन लोग कल तक जहाँ तक आ गए थे उससे आगे बढ़ेंगे. ये बात आ गई थी, ये इनको भव्यत्व अभव्यत्व को अशुद्ध, जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व को अशुद्ध क्यों कहा, ये आया था ना प्रश्न, है ना. तो उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया था कि संसारियों को शुद्ध नये से और सिद्धों को सर्वता ही 10 प्राण रूप जीवत्व का तथा भव्यत्व अभव्यत्व द्वय का अभाव होने से. यहाँ तक अपनी चर्चा कल हुई थी, अभी आगे बढ़े. देखो उन तीनों में, किन तीनों में, कि भव्यत्व अभव्यत्व और 10 प्राण रूप जीवत्व, जिसे अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा ना, तो उनमें भव्यत्व लक्षण पारिणामिक को तो भव्यत्व किसे कहते हैं, मोक्ष प्राप्त करने की योग्यता का होना, तो उसको तो यथा संभव सम्यक्त्वादि जीव गुणों का घातक देशघाती और सर्वघाती ऐसे नामों वाला मोहादि कर्म सामान्य पर्यायार्थिक नय से ढकता है. भव्यत्व का, भव्यत्व जो पारिणामिक भाव है, कि उसको भव्यत्व लक्षण पारिणामिक भाव को तो यथासंभव, यथासंभव माने जहां जो अपेक्षा, जहां जो लगता हो लगा लेना, सम्यक्त्वादि, सम्यक्त्वादि माने मुख्य रूप से सम्यक्त्व और चारित्र, तो वो जीव गुणों का, जीव गुणों माने जीव की गुण माने त्रिकाली गुण नहीं, क्योंकि त्रिकाली गुणों को कोई कर्म आच्छादित नहीं कर सकता, कोई कर्म नहीं ढक सकता, लेकिन पर्याय में उनकी अभिव्यक्ति होना अथवा नहीं होना, अथवा अल्प अभिव्यक्ति होना नहीं, तो जीव गुण माने जीव का परिणमन. या सम्यक्त्व आदि को गुण क्यों कहा, कि मिथ्यात्व आदि दोष हैं, राग आदि दोष हैं, तो दोष का अभाव करके प्रकट हुई दशा को गुण कहते हैं, त्रिकाली गुण की बात नहीं है, बराबर. तो उन जीव गुणों का घातक देशघाती और सर्वघाती, देशघाती और सर्वघाती माने देशघाती का मतलब क्या होता है, सर्वघाती का मतलब क्या होता है, कि जिसके होने पर, जैसे सम्य दर्शन मिथ्या दर्शन है, तो मिथ्या दर्शन मोह का उदय है, तो उसके होने पर सम्यक्त्व की प्रकटता सर्वथा नहीं होती, ठीक है. और सम्यक चारित्र में यह नहीं है, सम्यक चारित्र में क्या होता है, कि सम्यक चारित्र का अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन संबंधी चार प्रकार हैं. तो मान लीजिए उसमें, उसमें क्या होता है, कि जैसे अनंतानुबंधी का अभाव है तो स्वरूपाचरण चारित्र की प्रकटता है, लेकिन तीन चौकड़ी का सद्भाव है. अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यान दो कसाय का अभाव हुआ तो देश चारित्र की प्रकटता हुई और बाकी का राग है, ऐसे ही मुनिराज की अपेक्षा ले में तो तीन कसाई चौकड़ी का अभाव, तो उतनी शुद्धता माने उतना सम्यक चारित्र उनको प्रकट है, और एक चौकड़ी कसाई का सद्भाव है तो उतना उनको राग है। तो वो राग है ना कि जिस भूमिका में जितना राग है कि वो चारित्र का घातक परिणाम है, जिसको व्यवहार चारित्र बोलते हैं। सुनना ध्यान से, क्या बोला? जिसको व्यवहार चारित्र बोलते हैं वास्तव में वह चारित्र का घातक है। अब घातक को चारित्र बोलना पड़े तो उसे व्यवहार कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बोलो? घातक को चारित्र बोलना पड़ रहा है हमको। क्यों बोलना पड़ रहा है? कि वो चारित्र के साथ है। और एक बात और समझना कि जिस भूमिका में वो चारित्र के साथ है उस भूमिका का घात नहीं कर रहा है, आगे की भूमिका प्रकट नहीं होने दे रहा। बस इसलिए इतना इतनी है उसकी कि चतुर्थगुण स्थान है। अब चतुर्थगुण स्थान में स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट है और तीन कसाय चौकड़ी के सद्भाव वाला राग विद्यमान है। तो वो तीन कसाय चौकड़ी का राग चौथे गुणस्थान की दशा को खतरा नहीं कर रहा, लेकिन पांचवें गुणस्थान की दशा को प्रकट नहीं होने देगा। जब तक तीन कसाय चौकड़ी का राग रहेगा पंचम गुणस्थान नहीं आएगा। तो अगली भूमिका का घातक और वर्तमान भूमिका में दो स्वरूप, क्या कहा? दो बातें समझो। क्या कहा? वर्तमान भूमिका में दो स्वरूप और अगली भूमिका का घातक, लेकिन फिर भी गुणों के साथ रहने से उसे भी गुण का आरोप दिया जाता है। गुरुदेव श्री उदाहरण देते थे कि अपने मामा जी आवे ना और उनके साथ में पड़ोस का नाई भी आवे तो उसे भी मामा जी कहते हैं, मम्मी भी कहती मामा जी है ना, और मामा जी के साथ आवे तो मामा जी को जो खाने पीने को मिले वही उसे भी मिले। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत बढ़िया है, खाने पीने को मिलता है, सारी सुविधाएं मिलती है, तो मामा जी के बिना आने लगा। एक आध बार तो गांव का है तो लियाज कर ली, लेकिन बाद में कहा कि भाई साहब समझ लो, है ना। तो ये जो राग है चौथे गुणस्थान में, पांचवें गुणस्थान में, छठे गुणस्थान में, तीन ही गुणस्थान में राग होता है मुख्य रूप से, है ना। अभी देखना कि चौथे गुणस्थान में दो तीन चौकड़ी कसाई के सद्भाव वाला राग, पांचवें गुणस्थान में दो का तो अभाव है उतनी वितरागता है, और दो चौकड़ी का सद्भाव है उतना राग है, और मुनिराज को तीन कसाय चौकड़ी का अभाव है और एक चौकड़ी कसाय का सद्भाव है तो उतना राग है। तो वो राग उस भूमिका का तो नाश नहीं करता, लेकिन अगली भूमिका का प्रकट, अगली भूमिका को प्रकट नहीं होने देता। तो अगली भूमिका को प्रकट नहीं होने देता इसका मतलब वो शुद्धता का घातक है। और वर्तमान भूमिका में है ना, है तो सही लेकिन होने पर भी वो गुण के साथ में दोष रूप भाव है। समझ आ गया? व्यवहार चारित्र वास्तव में चारित्र नहीं है, चारित्र का मल और मैल है, लेकिन वीतराग भाव के साथ होने से उसमें गुण का आरोप करके राग को चारित्र कहना व्यवहार है। वो कोई कहे कि राग व्यवहार से तो चारित्र होगा, निश्चय से नहीं है। भाई साहब राग न निश्चय से चारित्र है और न व्यवहार से चारित्र है, लेकिन चारित्र के साथ वाले राग को चारित्र न होने पर भी चारित्र कहने का नाम व्यवहार है। इसको दूसरी भाषा में कहें अचारित्र भाव में चारित्र का उपचार है। समय दृष्टि का राग है ना, तो मिथ्या चारित्र तो आप कह नहीं सकते उसे। क्या कहा? मिथ्या दर्शन के साथ में हो तो मिथ्या चारित्र कहो, तो मिथ्या चारित्र तो आप कह नहीं सकते। और चारित्र का नाम चारित्र है, स्वरूप में चरणता, स्वरूप में लीनता का नाम चारित्र है। तो राग हो तो वहां राग, जितना राग है उतनी स्वरूप में लीनता नहीं है, जितनी स्वरूप में लीनता हुई उतनी वीतराग परिणति प्रकट हो गई। तो वास्तव में ये राग चारित्र नहीं है, चारित्र का दोष है। दोष को गुण कहना इसका नाम व्यवहार, और दोष को दोष कहना कि इसका नाम परमार्थ। राग को अचारित्र भाव कहना यह परमार्थ, और राग को व्यवहार चारित्र कहना यह व्यवहार। राग व्यवहार से चारित्र है ऐसा नहीं, राग को चारित्र कहना व्यवहार है। क्यों? क्योंकि वो अचारित्र है और अचारित्र में चारित्र का उपचार करके उसको चारित्र कहा जाता है। समझ में आ गया। तो उसका घातक कौन है, तो उसका घातक कहा मोहादि कर्म सामान्य। कर्म सामान्य का मतलब कि जहां दर्शन मोह की अपेक्षा लगे वहां दर्शन मोह लगा लेना, और जहां चारित्र मोह की अपेक्षा लगे वहां चारित्र मोह लगा लेना, ठीक है। तो उन्होंने कहा कर्म सामान्य, और वो कैसे कि पर्यायार्थिक नय से ढकता है। क्या मतलब कि द्रव्य स्वभाव को तो कोई ढक नहीं सकता, द्रव्य स्वभाव पर कोई कर्म का आवरण नहीं आ सकता। अरे द्रव्य स्वभाव के साथ किसी कर्म का कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध, ये ढकना वकना, ये सब पर्याय का काम है। पर्याय में और कर्म के उदय में, पर्याय एक समय की पर्याय में और उधर कर्म के उदय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्य स्वभाव के साथ कोई कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है। बराबर ख्याल में आ गया। अब देखो वहां जब कालादि लब्धि के, बस अब ये बड़ा चक्कर है, लोग कहते हैं कालादि लब्धि, मैंने काल लब्धि आएगी तब होगा ना भाई साहब, तो काल लब्धि आए तो काल लब्धि आएगी जब होगा हम क्या करें, काल लब्धि आएगी तब, अरे कालादि, काल लब्धि नहीं लिखा अकेला भाई, काल लब्धि का मतलब तो वो उस कार्य का काल, जिस काल में कार्य हुआ वो काल लब्धि कहलाती है, काल की प्राप्ति, जो होने योग्य है वो हुआ, ये भवितव्य। स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ, उसका नाम पुरुषार्थ, वो स्वभाव और उसी समय कर्म के उपशमादि का होना, पांचों समवाय एक साथ होते। कोई ज्ञानी काल लब्धि की मुख्यता से कथन करे, जैसे पंडित राजमल जी साहब कहते हैं काल लब्धि के बिना करोड़ों उपाय करे तो भी कुछ नहीं होता। काल लब्धि को कलश टीका में काल लब्धि की बात करेंगे, हैं, सम्यक दर्शन काल लब्धि आने पर, सब वो काल लब्धि की मुख्यता से बात करेंगे। और पंडित टोडरमल जी से कहा कि भगवान मोक्ष कैसे होगा, तो उन्होंने कहा पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। तो अभी क्या करें कि राजमल जी और टोडरमल जी को एक कमरे में बिठाएं अपन, दोनों पंडितों को, है ना, और कहे कि तुम पहले नक्की करके हमें बता दो, हमें भटकाओ मत। तुम कहते हो कि महाराज के पुरुषार्थ से होगा, ये कहते हैं काल लब्धि से होगा, तो आप दोनों विद्वान एक कमरे में बैठ जाओ, आराम से चर्चा कर लो, लड़ना हो लड़ लो, झगड़ना हो झगड़ लो, और हमको एक फाइनल निर्णय पर पहुंचा दो कि क्या है। कि भाई साहब अंतर है ही नहीं, टोडरमल जी और राजमल जी साहब कहते हैं कि हम दोनों में कोई अंतर नहीं है, हम काल लब्धि की मुख्यता से कथन करते हैं, चार समवाय को वहां पर गौण रूप से हम स्वीकार करते हैं। मुख्य मतलब कथन में काल लब्धि की मुख्यता कर रहे हैं, कार्य में काल लब्धि की मुख्यता नहीं है, कार्य में पांचों समवाय होते हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं हम पुरुषार्थ की मुख्यता कर रहे हैं, तो पुरुषार्थ की मुख्यता से हम कथन कर रहे हैं, इसका मतलब हम चार समवाय को उड़ा रहे हैं, ऐसा नहीं है, पांचों समवाय कार्य के काल में होते हैं। फिर ऐसा अंतर क्यों है कि जो व्यक्ति पुरुषार्थ के दंभ पर कर्तत्व का अभिमान सेवन करता है, मैं अपने पुरुषार्थ से कुछ भी कर सकता हूं, कि कुछ नहीं कर सकते तुम, होने योग्य होता है जब होने योग्य होता है तब होता है, और उसी समय तुम्हारा पुरुषार्थ है, सबका स्वकाल है। तो कोई जीव अगर पुरुषार्थ का अभिमान करके, पुरुषार्थ का अभिमान करके क्या करे, वो कर्तत्व के अभिमान का सेवन करता हो, पुरुषार्थ के बहाने कर्तत्व के अभिमान का सेवन करता हो, तो उसको काल लब्धि का ज्ञान दिया। और कोई काल लब्धि के बहाने प्रमाद का सेवन करता, आपने शू करवानू जो थसे थवानू हसे, क्यों बराबर ना, थोड़ी बहुत गुजराती है तो कहीं गलती हो तो बता देना, बराबर है, तो बता दे, हो जाएगा कि भाई अपने तो जो होना है ना काल लब्धि में, जब भी होना है तभी हो जाएगा, अपने को कुछ नहीं करना। तो काल लब्धि के बहाने अगर प्रमाद का सेवन करता हो तो पुरुषार्थ को ज्ञानी मुख्य करेंगे, और पुरुषार्थ के बहाने अगर कर्तत्व के अभिमान का सेवन करता हो तो ज्ञानी काल लब्धि को आगे करेंगे। और सच्चाई यह है कि जिस समय कार्य होता है काल लब्धि भी है, वही काल लब्धि है, होने योग्य हुआ वही भवितव्य है, उसी समय स्वभाव और स्वभाव की सन्मुखता का पुरुषार्थ है, और उसी समय कर्म के उपशम आदि भी हैं मोक्ष मार्ग के संदर्भ में। पांचों समवाय एक साथ होते हैं, और नहीं होते ना तो एक भी नहीं होते, क्या करें साहब, काल लब्धि तो आ गई थी हमारी लेकिन निमित्त नहीं आया, अथवा निमित्त तो दरवाजा खटखटा रहा था लेकिन हमारी काल लब्धि नहीं पकी थी। ऐसा नहीं होता, होंगे तो पांचों एक साथ होंगे और नहीं होंगे तो पांचों नहीं होंगे उस कार्य से संबंधित। उस समय दूसरे कार्य के पांच समवाय हैं लेकिन उस कार्य जिस कार्य की हम बात करें उस कार्य के पांच समवाय नहीं। तो ठीक है, तो यहां पे क्या कहा कि कालादि लब्धि वश, क्या लिखा यहां पे, कालादि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है। भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती माने, भव्यत्व शक्ति माने क्या कि मोक्ष जाने की योग्यता। तो भव्यत्व शक्ति की योग्यता माने क्या कि सम्यक दर्शन का होना। सम्यक दर्शन होने में तो सम्यक दर्शन हुआ ना, मोक्ष कहां हुआ कि किसने कहा तुमको मोक्ष नहीं हुआ, दृष्टि मोक्ष हो गया। क्या कहा, अरे दृष्टि मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा मोक्ष माने क्या होता है कि मोक्ष माने चारों गतियों का अभाव, ठीक है, तो चारों गतियों का अभाव हो गया तो संपूर्ण मोक्ष हो गया। तो जितनी जितनी गतियों का अभाव चौथे गुण स्थान में भी हुआ, ऐसे लगाओ विचार करो, नरक गति नहीं, त्रियंश गति नहीं, देव गति में भवनत्रिक नहीं, मनुष्य गति में हैं स्त्री और नपुंसक पर्याय नहीं, और जो पुरुष पर्याय उसमें भी हीन कुल दरिद्री ये सब नहीं, तो कितनी गतियों का अभाव चौथे गुण स्थान में हो गया। तो जितनी गतियों का अभाव चौथे गुण स्थान में हुआ उतना मोक्ष हुआ कि नहीं हुआ, उसका नाम है दृष्टि मोक्ष। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये तो वास्तव में सच बोलता हूं कि चतुर्थ गुण स्थान की महिमा, सम्यक दर्शन की महिमा क्या है, ये गुरुदेव ने प्रसारित की है। जिनवाणी में तो थी लेकिन गुरुदेव ने बताया, नहीं तो क्या है, अरे तुम कपड़े वाले तुम क्या हमको समझाओगे। आज जिस अभिमान का सेवन किया जा रहा है, कपड़े छोड़ देने के नाम पर केवल कपड़े छोड़ दिए, बाकी कुछ भी करने की छूट है ना, तो ये नहीं है मार्ग। केवल कपड़े तो अनंत बार छोड़े, और मैं तो कई बार बोलता हूं अपनी स्वाध्याय में कि कपड़े छोड़ने का नाम ही अगर मोक्ष मार्ग होता या मोक्ष होता या मोक्ष का मार्ग होता तो तिरियंश और नारकी तो कभी कपड़े पहनते ही नहीं है, फिर तो उनका तो हो ही जाना चाहिए ना। सम्यक दर्शन और उसके उपरांत जब आगे की भूमिका बढ़ती है तब सहज ही नग्न दिगंबर दशा आ जाती है, बराबर है। तो वो यहां पे देखना भाई कि वहां जब कालादि लब्धि के बस भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है तब क्या होता है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य के सम्यक सद्दान ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। क्या मतलब कि निज परमात्म द्रव्य के सम्यक सद्दान ज्ञान आच अनुचरण रूप पर्याय से परिणमित होना कहो, मोक्ष मार्ग में लगना कहो, भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति कहो, एक ही बात है। भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति माने क्या कि निज परमात्म द्रव्य की सम्यक सद्दान ज्ञान और उसके अनुचरण रूप से पर्याय का परिणमन हो जाना, यानी पर्याय पारनामिक भाव में अपनापन करती हुई, पारनामिक भाव को अपने रूप जानती हुई, निज परम पारनामिक भाव को अपने रूप जानती हुई और निज परम पारनामिक भाव का अनुभवन करती हुई, उसका अनुचरण करती हुई जो पर्याय परिणमित हुई उस पर्याय को सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र बोलते हैं, और वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन उसी को क्या बोलते हैं, भव्यत्व शक्ति की अभिव्यक्ति। माने मोक्ष का दरवाजा खोल दिया तुमने, मोक्ष का दरवाजा खोल दिया, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी पर कदम रख दिया, ठीक है। अभी उस प्रथम सीढ़ी के साथ में जितना ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, और जितनी आंशिक स्वरूप स्थिरता हुई अनंतानुबंधी के अभाव जितनी, कि वो स्वरूपा चरण चारित्र जितना चारित्र भी है और वो मोक्ष मार्ग है। तो वो यहां पे कह रहे हैं निज परमात्म द्रव्य के सम्यक, क्या शब्द का प्रयोग किया, कैसा है भगवान आत्मा, निज परमात्म द्रव्य, कैसा निज परमात्म द्रव्य, कि सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य। आचार्य भगवान कह रहे हैं तू परमात्म द्रव्य है, और ये कहता है महाराज मुझे परमात्मा ना कहो, मुझे तो, मैं तो अभी पामर हूं। गुरुदेव श्री क्या बोलते थे, पर्याय दृष्टि से किसी को देखा हो तो माफ करना। वचनामत में एक बोल आया, हम तो सबको सिद्ध समान ही देख रहे हैं, हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं, वे भले ही अपने को कैसा भी माने, हम तो सबको परमात्मा ही देखते हैं। ये ज्ञानी की विशाल दृष्टि होती है। पामरता नहीं है ज्ञानी को, ज्ञान नहीं है उसका है? मिथ्या दर्शन पर्याय में है, क्या ज्ञानी को उसका ज्ञान नहीं है? ज्ञान होने पर भी वो अवस्था गौण करने लायक है। क्यों अवस्था गौण करने लायक है, कि अरे ये अवस्था तभी तक तो है जब तक इसको अपने निज परमात्मा द्रव्य का बोध नहीं है। ये शेर है ना, शेर के गधों के झुंड में आ गया है, 99 गधे हैं और एक शेर का बच्चा है, और कुल मिला के 100 और एक कुमार के यहां। और कुमार क्या करता है कि कपड़े धोता है तो उनपे कपड़े लाद लाद करके लाता है। उतने में एक शेर ने देखा ऊपर से, अरे मेरी जाति बिरादरी का इधर, तो उसने ऊपर से दहाड़ लगाई, तो ये जितने गधे थे कपते कपाने लगे। इतने में वो जो शेर का बच्चा था उसने उधर देखा, उधर देख करके इधर देखा, अब वो 100 है ना अभी, और इधर देख करके एक दहाड़ लगाई, कितने बचे, कि वो अकेला बच्चा बाकी भग गए। बस इतना ही तो अज्ञान है। तो जो इतना सा अज्ञान है कि जिस समय हमको अपने चैतन्य के दर्शन होते हैं उसी समय प्रथम बार चैतन्य के दर्शन होते हैं, पहली बार भगवान आत्मा की अनुभूति होती है, पहली बार सम्यक दर्शन होता है, कहते हैं पहली बार के सम्यक दर्शन में ही जिस पामरता को हम अनादि काल से ढोते आ रहे हैं, जो पामरता हमारे माथे पर इतनी चढ़ गई कि एक समय की पामरता और उधर अनादि अनंत परमेश्वर स्वभाव है ना, तो एक समय की पामरता हमारे ऊपर इतनी हावी हो गई कि अनादि अनंत परमेश्वर स्वभाव को भूल गए और हम अपने को पामर मानने लगे। तो बस काम करना क्या है कि वह थोड़ा सा चेंज करना है। क्या करना, कि जब हम अनादि अनंत चैतन्य को विस्मृत करके, अनादि अनंत चैतन्य को गौण करके, एक समय की पामरता को मुख्य करके हम आत्मा को पामर मान सकते हैं, इसका उल्टा कर दो। क्या उल्टा कर दें, कि अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा की मुख्यता करके एक समय की पामरता को गौण करो और अंदर से आवाज उठाओ, मैं वर्तमान में पना बनाया परमात्मा हूं, हूं परमात्मा छू हेम नक्की कर, खत्म, खेल खत्म, वो पामरता का खेल खत्म। क्यों, क्योंकि वो इंद्रधनुषी खेल था, उसके मूल में कुछ नहीं था। ठीक है, तो वो यहां पे कहते हैं कि व्यक्ति होती है तब यह जीव सहज शुद्ध परम पारनामिक भाव लक्षण निज परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय से परिणमता है। और वह परिणमन, अब देखो अपने भगवान आत्मा की सम्यक श्रद्धा ज्ञान और आचरण रूप से परिणमता है, वस्तु स्थिति यह है। अब उस परिणमन को प्रतिपादन करने की दो शैलियां जिनागम में है, दो शैलियां जिनागम में कौन सी है, कि एक शैली है आगम शैली और एक शैली है अध्यात्म शैली। आगम शैली माने क्या, कि उसी परिणमन को कर्म की सापेक्षता से देखना और उसी परिणमन को आत्मा की अपेक्षा से देखना, आत्मा की अपेक्षा से उस परिणमन को देखना, वो अध्यात्म शैली है।
और कर्म की ओर से उस परिणमन को देखना, कहते वो आगम शैली है। कि अब आगम भाषा में क्या कहेंगे कि आगम भाषा में उसे औपशमिक, क्षयोपशमिक अथवा छायिक ऐसे भाव त्रय कहा जाता है। किसको? अपने निज परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और अनुचरण रूप जो पर्याय परिणमित हुई, उस पर्याय को आगम भाषा में क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा औपशमिक भाव, क्षयोपशमिक भाव अथवा छायिक भाव। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि जब वो पर्याय अपने निज परमात्म द्रव्य के सद्धान, ज्ञान और अनुचरण रूप परिणमित हुई, तो पर्याय में यह घटना हुई कि वो अपने परमात्मा की सद्धा, ज्ञान, अनुचरण रूप परिणमित हुई, उसी समय कर्म में भी एक घटना हुई थी। भले ही उस परिणमने वाले को कर्म की घटना का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा की अनुभूति में डूबा हुआ है, तो कर्म में क्या घटना हुई कि जब इसने परमात्मा का सम्यक श्रद्धान किया, ज्ञान किया और अनुचरण किया, तो कर्म में उपशम रूप घटना हुई। पहले क्या था? उदय था, उदय रूप घटना, उदय रूप परिस्थिति कर्म में चल रही थी। अभी तीन परिस्थितियां कर्म में बनती है, उसमें कौन कौन सी? उपशम रूप, क्षयोपशम रूप अथवा तो छायिक रूप। तो जब उपशम रूप अगर परिस्थिति बनी, इधर आत्मा के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान, अनुचरण रूप से परिणाम परिणमा, और उस समय अगर कर्म में उपशम की परिस्थिति थी, तो इस परिणाम को औपशमिक कहा। उधर कर्म में क्षयोपशम की परिस्थिति थी, तो इस परिणाम को क्षयोपशमिक कहा। उधर कर्म में क्षय की परिस्थिति हुई, तो इधर उस परिणाम को छायिक कहा। कर्म के उपशम से परिणाम में उपशम हुआ, कर्म के क्षयोपशम से परिणाम में क्षयोपशम हुआ, कर्म के क्षय से परिणाम में छायिक परिणाम हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन इधर ऐसा परिणाम परिणमा और उधर कर्म में क्या घटना घटी, तो कर्म में घटने वाली घटना की ओर से परिणाम का परिचय देना, सुनना ध्यान से, कर्म में घटने वाली घटना की ओर से परिणाम का परिचय देना, इसको बोलते हैं आगम शैली। क्यों? तो आत्मा की अपेक्षा से बात नहीं करेगा, वो कर्म की अपेक्षा से बात करेगा। तो कर्म की अपेक्षा से आत्मा के परिणाम को बतलाना, यह है आगम शैली, और आत्मा के आश्रय से आत्मा के परिणाम को बतलाना, कि इसका नाम है अध्यात्म शैली। तो अध्यात्म शैली में क्या कहा जाता है? और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्मा अभिमुख। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? शुद्धात्मा प्लस अभिमुख, अभिमुख माने उसके सन्मुख, शुद्धात्मा के सन्मुख परिणाम। ठीक है, अच्छा आगे शुद्धोपयोग, उसको क्या बोलेंगे? शुद्धोपयोग। और तीसरा इत्यादि पर्याय संज्ञा, माने पर्याय संज्ञा माने पर्याय का नाम प्राप्त करता है। यानी आगम भाषा से उस परिणाम को क्या बोलेंगे? शुद्धात्माभिमुख परिणाम, शुद्धात्मा के सन्मुख परिणाम, शुद्धात्मा की ओर ढले हुए परिणाम, शुद्धोपयोग, है ना। अब अभी अभी जो चर्चा चलती थी ना, अभी शुद्धोपयोग, अब कोई कहे कि चौथे गुणस्थान में शुद्धोपयोग नहीं होता, तो भाई साहब भव्यत्व भाव की अभिव्यक्ति कौन से गुणस्थान में होती, बताओ जरा। चौथे गुणस्थान में आगम शैली से आओ तो प्रथम सम्यक दर्शन जो होता है किसी भी जीव को, आगम शैली की अपेक्षा से अपन बात करें तो प्रथम सम्यक दर्शन वो उपशम सम्यक दर्शन होता है। मैंने पहले कर्म का उपशम होगा, फिर कर्म का क्षयोपशम होगा। उपशम का काल बहुत थोड़ा है, उपशम से बदल करके या तो वो क्षयोपशम में चला जाएगा और या तो मिथ्यात्व में आ जाएगा, और क्षयोपशम का भी अभाव होकर के छायिक होगा, है ना। गुरुदेव श्री जोड़नी छायिक की भी बात करते थे, जातिष्मन ज्ञान वैभव ग्रंथ है ना महेश श्री के, तो उसमें जोड़नी छायिक की बात आई है। क्या मतलब? कि देखो वर्तमान में पंचम काल में बहुभाग जीवों को सम्यक दर्शन नहीं होगा, अंगुली पे गिनने लायक लोग होंगे, चौथे गुणस्थान में आराम से होता था ना, इतने आराम से पंचम काल में होगा नहीं। और गजब की बात यह कि होगा तो पंचम काल में होने वाले के छूटने की संभावना नहीं बताए। उपशम से क्षोभ सम में आ जाएगा और क्षोभ सम में आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि जब इसको छाईक होगा तब इस क्षोभ सम का अभाव होकर के छाईक सम में दर्शन हो जाएगा। उसी को गुरुदेव श्री बोलते थे जोड़नी छाईक, छाईक के साथ जुड़ान करा देगा। अब प्रश्न यह कि पहले उपशम क्यों होता है और उपशम से अगर जीव क्षोभ सम में आ जाए उसके लिए तो कोई प्रश्न ही नहीं, लेकिन उपशम से गिर क्यों जाता है? सोगानी साहब ने उत्तर दिया कि प्रथम बार जब इसको आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा कैसा है? आत्मा आनंदमय तत्व है ना, आनंदमय तत्व की अनुभूति, आनंदमय तत्व तो है लेकिन अभी तक आनंदमय तत्व की अनुभूति नहीं हुई। अब जब आनंदमय तत्व की अनुभूति होती है और पहली बार आनंद का संवेदन आता है तो वो ऐसा आनंद आता है कि अनंत काल में इसने जिस आनंद को नहीं चखा हो, जिस आनंद को नहीं भोगा हो, वैसा आनंद जिसको आता है। और ऐसा आनंद जब इसको आता है तो उस आनंद को ये पचा नहीं पाता और इसको उस आनंद में आहा आ जाता है, आनंद में आनंद आ जाता है। क्या होता है? आनंद में आनंद आ गया, एक समय की पर्याय रूप आनंद में आनंद आ गया तो कहते हैं आनंद मूर्ति भगवान आत्मा की दृष्टि छूट गई। क्यों? क्योंकि सम्यक दर्शन क्या, एक समय की सिद्ध दशा की भी अगर हमें अधिकता लगती है तो परमात्मा स्वभाव की अधिकता छूट जाएगी। तुम एक समय के आनंद की बात कर रहे हो, यहां सिद्ध दशा की भी अधिकता नहीं। क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि परमात्मा तत्व अपना जो शुद्धात्मा है ऐसी ऐसी अनंत सिद्ध दशाओं को पी करके बैठा है। बहन श्री के वचनामृत में एक बोल आता है कि केवल ज्ञान हो गया किसी को, सम्यक दर्शन हो गया किसी को, तो उछलने लगा, उछलने लगे कोई, अरे सम्यक दर्शन ऐसा ऐसा सम्यक चरित्र ये, तो कहते उछलता क्यों? जो तेरे स्वभाव में था वही तो आया, तो तुझे इस प्रकट की महिमा आनी चाहिए कि जो इस स्वभाव में था उसकी महिमा आनी चाहिए। मान लो अपन ने अपनी तिजोरी में 1 करोड़ रुपए रखे और 5 लाख रुपए उसमें से अपन ने निकाले और निकाल करके उछलने लगे, अपन क्या उछलने लगे, 5 लाख उछलने लगे, तो पिताजी क्या बोलते हैं कि बेटा इसमें उछलने की क्या बात है, तिजोरी में था तभी तो प्रकट हुआ ना, तो था उसी की प्राप्ति हुई, तो उस प्राप्ति में मत उछल। अगर तेरे को उछाला भी लगाना है तो उस शाश्वत पिंड पर लगा, शाश्वत ध्रुव तत्व पर तेरा उछाला आना चाहिए और उसमें से प्रकट होने वाली कोई भी सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध दशा तक की कोई भी पर्याय प्रकट हो जाए वो तेरे उछलने जैसी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पर्याय में कितनी भी पूर्णता हो, वो पर्याय भले ही पावन हो लेकिन वो पर्याय पतित पावन नहीं है। क्या कहा, क्या कहा? पर्याय पावन हो सकती है, सम्यक दर्शन पावन हो सकता है सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अरे अरिहंत दशा, सिद्ध दशा, ये पावन पर्याय है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन ये पर्याय पतित पावन नहीं है। क्या मतलब? अगले समय इस पर्याय को तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगले समय वो खुद ही नहीं है, अगले समय नहीं। और ये परमात्मा कैसा कि एक बार परमात्मा में शुद्धता की धारा, इस परमात्म तत्व के आश्रय से शुद्धता की धारा प्रकट हुई, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन हुआ, केवल ज्ञान का परिणमन हुआ, सिद्ध दशा का परिणमन हुआ, सादी अनंत काल तक ये परिणमन की धारा इसमें से निकलती रहेगी। तो जिसमें से सादी अनंत काल तक, जिसके अवलंबन से सादी अनंत काल तक ऐसी पवित्रता की धारा बहती रहे वो महान हुआ या वो एक समय की पवित्रता की प्रकट पर्याय महान हुई? विकार की अपेक्षा से तो निर्मल पर्याय को महान कहेंगे लेकिन त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से निर्मल पर्याय भी किसी गिनती में नहीं है। राग की अपेक्षा से निर्मल पर्याय को परमार्थ कहेंगे लेकिन त्रिकाली द्रव्य की अपेक्षा से जब बात आएगी तो कहेंगे अरे सम्यक दर्शन की तो क्या बात, केवल ज्ञान और सिद्ध दशा की पर्याय भी शुद्ध सद्भूत व्यवहार नहीं का विषय है, वो भी परमार्थ का विषय नहीं है। वो आश्रय करने लायक नहीं है, प्रकट करने लायक हो लेकिन वो आश्रय करने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि एक समय की पर्याय आश्रय करती है, एक समय की पर्याय का आश्रय नहीं लिया जाता। जो आश्रय करने वाली हो उसका आश्रय कैसे लोगे आप? वो तो खुद आश्रय करती है। समझना बात को, जरा गंभीर है थोड़ा। तो आगम भाषा में क्या कहा, पहले याद करो, औपशमिक, क्षयोपशमिक और क्षयिक, ऐसे भाव त्रय कहा जाता है। कौन सा भाव निकाला? पारनामिक भाव की तो बात ही नहीं, औदयिक भाव। मोक्ष मार्ग की पर्याय में, मोक्ष मार्ग में औदयिक भाव का कोई स्थान नहीं, ना सम्यक दर्शन में, ना सम्यक ज्ञान में और ना सम्यक चारित्र में। मतलब सम्यक दर्शन के साथ राग हो, सम्यक ज्ञान के साथ राग हो, सम्यक चारित्र के साथ राग हो, और उसे भले ही व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहा जाता हो, उसे भले ही व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता हो, लेकिन वास्तव में बंद मार्ग में मोक्ष मार्ग का उपचार करके उसे मोक्ष मार्ग कहना, उसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। राग कभी मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता, ऐसा समझो पहले। और उसी परिणाम को आगम भाषा में क्या कहा कि शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम शुद्धोपयोग इत्यादि पर्याय संज्ञा पाता है। बराबर है? अब देखो आगे बहुत जोरदार है, एक एक चर्चा गजब की है। ये क्या कहते हैं आगे, वह पर्याय, कौन सी पर्याय? औदयिक भाव की तो बात ही नहीं, जिसको आगम भाषा में औपशमिक भाव कहा, आगम भाषा में क्षयोपशमिक भाव कहा, आगम भाषा में क्षायिक भाव कहा, अध्यात्म भाषा में शुद्धात्मा अभिमुख परिणाम कहा और शुद्धोपयोग कहा। ठीक है, ठीक है। शुद्धोपयोग के फल को भी शुद्धोपयोग कहते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? मोक्ष महा प्रकाशक का जो नहीं नियम, अपना नियम सार है ना, तो नियम सार में जो 12वां अधिकार है ना, वो शुद्धोपयोग अधिकार है, और वास्तव में वर्णन किया है वहां शुद्धोपयोग का फल। तो शुद्धोपयोग के फल को भी शुद्धोपयोग कह देते हैं, कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं है ज्यादा। तो वह पर्याय कौन सी? वही पर्याय निर्मल, शुद्धात्मा के सन्मुख ढली हुई शुद्धोपयोग रूपी पर्याय, शुद्ध पारनामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। अब आप देखो, यहां लिखा कथनचित भिन्न है, ठीक है। गुरुदेव श्री ने कहा प्रवचन में, मीठी भाषा में कहा है कथनचित भिन्न है, पढ़ लेना प्रवचन, पढ़ लेना, सुन लेना। अरे खरेखर तो सर्वथा भिन्न है, एक समय का परिणाम है ना। तो कथनचित भिन्न क्यों कहा यहां पे? कथनचित अभिन्न नहीं कहा, कथनचित भिन्न है। जोर किस पर देना है? आगे बात समझ में, क्यों, किस लिए भिन्न है? कि भावना रूप होने से, कि ये भावना रूप है भाई साहब। शुद्ध पारनामिक भाव तो भावना रूप नहीं है, वो तो क्या है? वो तो ध्येय रूप है, वो तो आश्रयभूत है, और ये परिणाम तो भावना वाला है, उसका आश्रय करने वाला परिणाम है। ध्यान पर्याय विनश्वर अभी आने वाला है, ठीक है। यदि वह पर्याय एकांत रूप से शुद्ध पारनामिक भाव से अभिन्न हो तो क्या होगा? तो आचार्य कहते हैं, मोक्ष का प्रसंग आने पर इस भावना रूप मोक्ष कारणभूत पर्याय का भी विनाश होने से शुद्ध पारनामिक भाव का भी विनाश को प्राप्त हो जाए। तो अगर ये भावना रूप पर्याय, भावना रूप पर्याय माने शुद्धात्मा की सन्मुखता रूप पर्याय, शुद्धोपयोग रूप पर्याय, अगर ये पारनामिक भाव से सर्वथा अभिन्न हो तो क्या दोष आएगा? तो उन्होंने कहा कि भाई ये पर्याय है ना, कि ये मोक्ष कारण रूप पर्याय है, मोक्ष के कारण रूप पर्याय है, मोक्ष मार्ग रूप पर्याय है, और मोक्ष मार्ग रूप पर्याय होने से जब मोक्ष होता है तो मोक्ष मार्ग की पर्याय का वे हो जाता है, ठीक है। और चूंकि आपने ये माना कि मोक्ष मार्ग रूप ये पर्याय पारनामिक भाव से सर्वथा अभेद है, ठीक है, तो मोक्ष कारणभूत उस भावना पर्याय का वे होगा, तो अकेला उस पर्याय का ही वे नहीं होगा, उसके साथ पारनामिक भाव के साथ उसको आपने अभेद माना ना, तो पारनामिक भाव के भी नाश का प्रसंग आएगा। समझ में आ गया है? तो इसलिए क्या निष्कर्ष क्या निकला कि पर्याय आती गई जाती गई और ध्रुव परमात्मा ऐसा का ऐसा रहा। सोगानी साहब की भाषा में कहें पर्याय परिणम गया और मैं ऐसा का ऐसा रहा, परिणाम परिणम गया, परिणमित होकर के चला गया, नया आया वो भी परिणमित होकर के चला गया, नया आया परिणमित होकर के चला गया, है ना। समुद्र के ऊपर ऊपर लहरें आती है और जाती है, लेकिन अब समुद्र अपने शांत और प्रशांत स्वभाव में एक रूप जैसा का तैसा बना रहता है। ये तो पर्याय की लहरें हैं, तरंगे हैं। और पारनामिक भाव क्या है कि पारनामिक भाव तो समुद्र है, समुद्र है वहां लहरें उठती है, ये बात सही है, लेकिन लहरें समुद्र नहीं है, ठीक है। पारनामिक भाव रूप त्रिकाल स्वभाव ना हो तो पर्याय का उत्पाद वे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वस्तु के बिना पर्याय किसके आधार पे होगी, लेकिन पर्याय मात्र वस्तु नहीं है। आ गया, वो तो एक समय का परिणाम आया और गया, अगर वही सब कुछ है वस्तु है तो फिर एक समय के परिणाम के आने के साथ द्रव्य का भी उत्पाद होना चाहिए, व्यय होना चाहिए, अर्थात द्रव्य का भी नाश होना चाहिए। होता क्या है, परिणाम का उत्पाद होता है, परिणाम का नाश होता है, और द्रव्य ऐसा का ऐसा कायम रहता है। द्रव्य का न उत्पाद होता है न द्रव्य का व्यय होता है, द्रव्य ध्रुव स्वरूप से अनादि अनंत ऐसा का ऐसा कायम रहता है। पर्याय परिणम गया और मैं ऐसा का ऐसा रह गया, ये व्यवस्था है। द्रव्य पर्याय की कितनी गजब की व्यवस्था है। और एक ही वस्तु के दोनों अवयव, पूरी द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु है ना, कि उस वस्तु का द्रव्य अंश उसको द्रव्य कहते हैं, और उसका प्रति समय बदलने वाला अंश उसको पर्याय कहते हैं। अभी हमको एक शंका और होती है यहां पे, समाधान कर ही लें उसका, कि साहब समय दर्शन कल क्या बात कही थी, कल कही थी ना बात कि उत्पाद वे द्रव्युक्तम सत है ना, यानी प्रमाण का विषयभूत जिसको द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ कहा उसमें भी उत्पाद वे द्रव्य आया, और शुद्ध नय का विषयभूत जिसको दृष्टि का विषय कहा कि उसमें भी द्रोपना आया। सम्यक दर्शन का विषय शुद्ध नय का विषयभूत ध्रुव है, प्रमाण में पाया जाने वाला ध्रुव नहीं। हालांकि ध्रुव वही है, ध्रुव कोई अलग दो ध्रुव नहीं है, लेकिन जिस ध्रुव को उत्पाद व्यय की अपेक्षा आवे वो प्रमाण का ध्रुव, और जिसको जो उत्पाद व्यय निरपेक्ष हो वो शुद्ध नय का ध्रुव। अभी प्रश्न क्या है कि प्रश्न यह है कि भाई साहब अगर हम अकेले ध्रुव का आश्रय करेंगे तो ध्रुव तो एक अंश हुआ, अंशी तो नहीं है ना, नहीं है ना, बराबर है। ध्रुव क्या है, उत्पाद वे ध्रुव, तो ध्रुव तो क्या हुआ। अपन लोगों की बड़ी शंकाएं रहती है, दिमाग में उलझने चलती रहती है कि भाई वो तो अंश हुआ ना, और अंश के अवलंबन से कभी सम्यक दर्शन तो अंश के अवलंबन से नहीं होता, क्यों, क्योंकि जब वो अंश का अवलंबन करने जाएगा, जाएगी श्रद्धा की पर्याय अंश में अपनापन करेगी, तो उसे तो सदा ये अनुभूति होगी, क्या अनुभूति होगी कि ये तो अंश है पूरा नहीं है, अंश है पूरा नहीं है, अंश है पूरा नहीं है, और कुछ बाकी है बाकी है बाकी है, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा। अब सुनो इसका उत्तर, कि जब हम प्रमाण की अपेक्षा से वस्तु को देखते हैं, द्रव्य पर्याय सापेक्ष वस्तु को देखते हैं, ठीक है, तो उसकी अपेक्षा से ध्रुव अंश है, और जब हम शुद्ध नय की अपेक्षा से ध्रुव को देखते हैं तो ध्रुव अंश नहीं है, वो अंशी है। इसका उदाहरण दूं तो समझ में आए। देखो अपना परिवार है ना, और अपने परिवार में 10 मेंबर हैं, 15 मेंबर हैं, तो परिवार की अपेक्षा से देखा जाए तो हर व्यक्ति उस परिवार का एक अंश है, बराबर है, पक्की बात है, अंश है। अभी उस परिवार में एक नई बहू आई, शादी हुई, बेटे की शादी हुई और एक नई बहू आई, ठीक है। तो नई बहू और नई बहू का पति, वो दोनों क्या हैं, कि परिवार के अंश है ना, ठीक है। अब उस नई बहू के लिए वो पति क्या है, अंश है या अंशी है, बोलो। परिवार के लिए अंश है, लेकिन उस पत्नी के लिए उसका पति अंश है या अंशी है, ये बताओ। कि परिवार के सारे सदस्य परलोक गमन कर जाएं, और यदि उसका पति जिंदा है तो उसका सौभाग्य उजड़ा नहीं है, और अकेला उसका पति मर जाए और परिवार के सारे लोग जिंदा हैं तो उसका सौभाग्य सुरक्षित, उसका सौभाग्य उजड़ गया है। जिसके होने पर सौभाग्य जीवित रहे, और जिसके नहीं होने पर, जिसके उजड़ जाने पर सौभाग्य उजड़ जाए, वह उसके लिए अंश नहीं होता, अंशी होता है। समझ आ गया। तो श्रद्धा की पर्याय जब त्रिकाली ध्रुव में अपनापन करती है तो उसका सम्यक रूप परिणमन हो गया, माने वो पर्याय सौभाग्यवती हो गई। इसलिए ध्रुव तत्व श्रद्धा के लिए अंश नहीं, अंशी है। वो तो समग्र द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ की ओर से जब आप देखो तो उत्पाद भी एक अंश है, वे भी एक अंश है, और ध्रुव भी एक अंश है, लेकिन श्रद्धा के लिए ध्रुव अंश नहीं है, अंशी है, अपूर्ण नहीं है, संपूर्ण है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कोई शल्य दिमाग में नहीं रखना। गुरुदेव श्री ने हर प्रश्न का समाधान अपने लिए किया है, कोई शल्य बाकी नहीं रखना। नहीं समझ में आए तो एक दिन पहले भी कहा था, फिर कहता हूं, कोई बात अगर हमारे गले नहीं उतरे तो ज्ञानी की बात पर प्रश्न चिन्ह लगाने के बजाय अपनी समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाना। कहीं न कहीं मेरी समझ में कोई चूक है, मेरे को ये बात अभी समझ में नहीं आ रही है, मैं इस बात को विचार कोटि में रखता हूं। लेकिन ऐसा कभी नहीं करना, गुरुदेव ने तो कहा है, लेकिन शास्त्र प्रमाण क्या है? ज्ञानी के वचनों को सुनकर के भी, अभी जिसे ज्ञानी के वचनों की अपेक्षा से भी शास्त्र प्रमाण की मुख्यता भाषित होती है, अभी दिल्ली बहुत दूर है। क्यों भाई साहब? शास्त्र में मार्ग कहा है, मर्म नहीं। मर्म ज्ञानी के अंतर अभिप्राय में रहा है ना? हम ज्ञानी से प्रमाण मांगते हैं शास्त्र का। अरे ज्ञानी तो खुद इतने सावधान होते हैं। गुरुदेव श्री ज्ञान गोष्ठी में प्रश्न है कि साहब, तीर्थंकर भगवान का जीव जब 9 महीने माता के गर्भ में रहता है, ठीक है, तो उस समय उनकी अनुभूति का क्या होता होगा? वे समय दृष्टि है तो अनुभूति तो होनी चाहिए ना, 6 महीने में एक बार तो होनी चाहिए कम से कम। अप्रत्याख्यान कसाय का वासना काल 6 महीना है, ठीक है। तो गुरुदेव ने कहा, विचार तो बहुत आते हैं लेकिन आगम प्रमाण नहीं मिलता। समझ में आ गया? जिनका आगम प्रमाण नहीं मिलता, तो गुरुदेव उस बात को कहते थे, कहते ऐसा हमें लगता है लेकिन आगम प्रमाण नहीं मिलता। तो अपनी बात क्या लगता है, अनुभव से क्या लगता है, ये भी कह दिया, और आगम प्रमाण नहीं मिलता ये बात भी वो खुद स्पष्ट करके गए हैं। हर बात पर मुद्दे का स्पष्टीकरण किया है। आ गया? तो क्या है और क्या नहीं है वो नक्की करना पड़ेगा, है ना। तो अंश और अंशी की बात हो गई। अच्छा अभी आगे देखो, मोक्ष कारणभूत पर्याय का अभाव होने से, मोक्ष कारणभूत पर्याय का
विनाश होने से शुद्ध पारिणामिक भाव भी विनाश को प्राप्त हो, अगर ऐसा सर्वता भेद हो तो। परंतु ऐसा तो होता नहीं है। क्या कहा? ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि शुद्ध पारिणामिक भाव तो अविनाशी है, अनादिकाल से आज तक कभी भी शुद्ध पारिणामिक भाव का कभी विनाश नहीं हुआ। अरे जिसे शुद्ध पारिणामिक भाव कहते हैं उसका विनाश नहीं है, और जिसका विनाश होता है वो शुद्ध पारिणामिक भाव ही नहीं है, वो कोई और भाव है। हमने गलती से पारिणामिक समझ लिया हो तो हमारी समझ सही करना, पारिणामिक भाव को सही करने की कोशिश मत करना। क्यों? क्योंकि पारिणामिक भाव बिगड़ा ही नहीं है, उसे हम क्या सही करेंगे? जो परिणाम पारिणामिक भाव के सन्मुख नहीं हुआ वो परिणाम बिगड़ा है, वो परिणाम में बिगाड़ हुआ है, वस्तु में कभी बिगाड़ नहीं होता। और बिगाड़ हुआ परिणाम में भले ही बिगाड़ हुआ हो, लेकिन वो बिगाड़ वस्तु का स्वरूप नहीं है। मलिनता रुचती नहीं, मलिनता टिकती नहीं, इसलिए मलिनता वस्तु का स्वरूप नहीं। कहाँ आया भाई श्री का वचना? आया वचनामत में है, बोल। मलिनता रुचती नहीं, मलिनता टिकती नहीं, इसलिए मलिनता वस्तु का स्वरूप नहीं हो सकती। टिकती भी नहीं, वस्तु का स्वरूप हो तो टिका हुआ होना चाहिए भाई। निर्मलता की धारा प्रकट होती है तो निर्मलता की भले ही पर्याय है, लेकिन वो पर्याय भी टिकाऊ पर्याय हो गई ना। भले ही नई नई पर्याय हो, लेकिन एक धारा शुद्धता की चलेगी, कभी अशुद्धता नहीं आएगी। यह अशुद्ध विकार में तो है ही नहीं, समझा? इधर टिकता भी नहीं, तो मिट जाता है। जो मिट जाए वो मेरा स्वरूप कैसा, और जो मेरा स्वरूप है वो मिटे कैसा? अरे पर्याय में भी विचार करो। तो गुरुदेव श्री एक बात कहते थे, बंधन योग्यता है और मुक्ति स्वभाव है। किसका? किसका? द्रव्य का नहीं, पर्याय का। कि पर्याय का भी बंधन योग्यता है और मुक्ति स्वभाव है। क्या मतलब? कि पर्याय में वर्तमान में बंधन है ना, कि बंधन स्वभाव नहीं, एक क्षणिक योग्यता है। पर्याय का स्वभाव भी मुक्ति है। क्या मतलब? कि एक बार मुक्ति की पर्याय प्रकट होने के बाद अब अनंत काल तक उसका कभी अभाव नहीं होगा। जिसका अनंत काल तक कभी अभाव नहीं हो, पर्याय का स्वभाव भी वो है। भले ही अनादि से चली आ रही हो, लेकिन जिसका अंत आ जाता है वो बंधन पर्याय का भी स्वभाव नहीं हो सकता। तो वस्तु का स्वभाव तो कैसे होगा? बात समझ में आ रही है? बहुत गजब की बातें हैं, है ना। अब इसके बाद आगे जो ये चर्चा अपनी आने वाली है कि इसलिए ये सिद्ध हुआ कि शुद्ध पारिणामिक भाव विषयक अर्थात शुद्ध पारिणामिक भाव का अवलंबन लेने वाली जो भावना, उस भावना रूप जो औपशमिक आदि तीन भाव वे समस्त राग आदि से रहित होने के कारण शुद्ध उपादान कारणभूत होने से मोक्ष का कारण अर्थात मोक्ष के कारण है, परंतु शुद्ध पारनामिक नहीं, अर्थात शुद्ध पारनामिक भाव मोक्ष का कारण नहीं है। अब इसमें खाली मुझे अभी दो बात कह के पूरी करता हूं कि यहां पर पहले आया था, ऊपर आया था शुद्ध भाव के ऊपर आया था उपादान भूत, ये शब्द आया था ऊपर। क्या शब्द आया था ऊपर? उपादान भूत। और यहां पर आया शुद्ध उपादान कारण भूत। समझ में आ गया? उपादान भूत वो त्रिकाली उपादान की बात थी, और उपादान कारण भूत ये क्षणिक उपादान की बात है कि जिसके होने पर कार्य होता ही होता है। ये अंतर है दोनों में। अब ये कैसे मोक्ष का कारण नहीं है और क्या है पारिणामिक भाव मोक्ष का कारण क्यों नहीं है, ये पर्याय भाव मोक्ष का कारण कैसे है, ये जो सारी चर्चा है ये अपन कल की स्वाध्याय में अपन करेंगे और कोशिश करेंगे, पूरी अपनी कोशिश नहीं पूरा कर ही देंगे कि ये जो 320 नंबर की गाथा है अष्टानिका के दौरान इस गाथा को अपन पूरी करें। और कोई भी प्रश्न उत्तर हो तो आप कभी भी रख सकते।
सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप 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 सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। आती काले चतुर्दशी होवाथी आपणे जे समूह प्रतिक्रमणनु आयोजन करीए छे ते अष्टानिका पर्वने उपलक्ष्यमां आती काले पण पंडित श्री बिजोलियाजी साहेबनू स्वाध्याय रहेशे, तो आती काले रात्रे पण આપણે પ્રતિક્રમણ સમૂહ પ્રતિક્રમણનું આયોજન કરેલ નથી। અશરીરી સિદ્ધ દર્શન પ્રાપ્ત ઋષભાદી મહારાજ ચોવીસ જીનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો। વિદેહ ક્ષેત્રમાં વિદ્યમાન સમોસરમાં શોભાયમાન શ્રી મંદરાદી અજિત વેરે પર્યંત વિશ્વેરમાન જીનેન્દ્ર ભગવાનનો જય હો। અદ્ય જીનમંદિરમાં જયમણપણે બિરાજમાન શ્રી બાહુબલી મુનિન્દ્ર ભગવાનનો જય હો। દિવ્યધન્યના સારભૂત નિત્યબોધક પરમાગમ સમયસારી સમસ્ત જીનવાણી માતનો જય હો। કલિકાસ્વજ્ઞ ભગવાન શ્રી કુંદકુંદ આચાર્યદેવ આદિ સમસ્ત આચાર્ય ઉપાધ્યાય સાધુ ગુરુ ભગવંતોનો જય હો। અમ ભક્તોના તરણહાર અનંત અનંત ઉપરી પ્રાતસ્મરણી શ્રી કહાન ગુરુ દેવનો જય હો। કહાન ગુરુ મહિમા પ્રકાશક પ્રસમતી પૂજ્ય ભગવતી માતનો જય હો। અનંત કરુણા કૃપા નિધાન પરમ કૃપાળુ દેવ આદિ સમસ્ત જ્ઞાની ધર્માત્મા સંતોનો જય હો। શાશ્વત પર્વ અષ્ટાનિકા પર્વનો જય હો। શ્રી પરમ વિતરાગ સનાતન દિગંબર જૈન ધર્મનો જય હો। નિજ નિધિ નિજ મેં બતાઈ યહ અનંત ઉપકાર હે ઇસકે લિયે જિન વાણી માં કો વંદના સત બાર હે। બોલો દ્વાદશ સાંગમય સમસ્ત જિનવાણી માતનો જય હો। અત્રે દસ મિનિટના વિશ્રામ બાદ સોમેલભાઈ દ્વારા તત્વાસૂત્ર અથવા અર્થાત મોક્ષ શાસ્ત્ર ઉપર સ્વાધ્યાય 45 મિનિટના રહેશે। નીચે બાળકોની પાઠશાળા ચાર પ્રકારની 10:30 થી 11:30 અને 11:30 થી 12:30 ગુજરાતી પાઠશાળાના વર્ગો રહેશે, અને રાત્રે આપણે યથાવત કાર્યક્રમ રહેશે 7:15 થી।